ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں حکومت اور عدلیہ کے مابین تصادم، اور صدر آصف زرداری کا پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ منتخب صدر نے مشترکہ پارلیمان کے اجلاس کو 5 بار خطاب کیا ہو، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا ذکر خود صدر آصف علی زرداری نے آج اپنے خطاب میں بھی کیا۔ آصف علی زرداری نے اپنے خطاب کے دوران اپنی حکومت یا 5 سالہ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی زیر قیادت مخلوط حکومت کی کارکردگیوں کا تذکرہ کیا اور اپنی کامیابیوں کو بھی گنوایا۔ اس دوران اپوزیشن نے ان کے خطاب کا بائیکاٹ بھی کیا اور ان کے خلاف پارلیمنٹ کے ایوان میں نعرے بھی لگائے گئے۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر طرز نگار اور ممتاز صحافی جناب جاوید صدیق صاحب۔ جاوید صدیق صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صدیق صاحب، اس حقیقت اور اس اہمیت پر کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کے صدر نے 5ویں بار ایک ہی پارلیمنٹ کو خطاب کیا ہے اس کے مشترکہ اجلاس سے؟
جی ہاں، یہ پاکستان کی جو گزشتہ 25-30 سال کی پارلیمانی تاریخ ہے اس میں یہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے اپنا 5واں خطاب جو ہے پارلیمنٹ سے کیا ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہر سال صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتا ہے۔ لیکن یہ موقع بہت کم لوگوں کو ملا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے، انہوں نے بھی 4th سال جو تھا اس میں اپنی حکومت کو تحلیل کر کے الیکشنز کروا ڈالے تھے، اور پھر ان کے خلاف ملک میں ایک تحریک چل پڑی۔ لیکن اس کے علاوہ پھر کسی صدر کو یہ موقع نہ ملا کہ وہ اپنی مدت پوری کرے اور 5 دفعہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرے۔ تو یہ غیر معمولی بات ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود اور تمام تر چیلنجز کے باوجود جس موجودہ حکومت جو ہے اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے اور یہ 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ ابھی اپنا 5واں بجٹ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ جب یہ حکومت اس نے اقتدار سنبھالا تھا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ حکومت 2 یا 3 سال سے زیادہ چل سکے گی، اور پاکستان کے تجزیہ کار اور سیاسی حلقے یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید صدر زرداری جو ہے وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکیں گے، اور ان کی حکومت جو ہے وہ اس کو چلتا کیا جائے گا، اور شاید فوج جو ہے وہ ٹیک اوور کرے یا مداخلت کرے، یا پھر عدلیہ کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس کے نتیجے میں یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ سب اب مانتے ہیں۔ پاکستان میں جو سیاسی کھلاڑی ہیں وہ سب سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ صدر زرداری ایک ہوشیار سیاسی کھلاڑی ہیں، اور انہوں نے سب کو مات دی ہے، اور انہوں نے ایک چیز جو بہت کامیابی سے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ رکھے رہے ہیں۔ اور اس دوران میں بڑی مشکلات ہوئی، ان کے 1-2 اتحادی جو ہے وہ ان سے نالاں ہوئے اور الگ ہونے کی بھی کوششیں کی، اعلانات بھی کیے، لیکن صدر نے اپنی جو مفاہمتی پالیسی ہے اس کے تحت ان کو دوبارہ اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو اپوزیشن جو ہے جو کہ کوشش کرتی رہی ہے، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے جو بڑی اپوزیشن جماعت ہے، وہ کوشش کرتی رہی ہے کہ کسی طرح اس حکومت کے اندر دراڑیں پڑیں اور اس کے اتحادی جو ہیں اس کو چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدر زرداری کی ایک کامیابی ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کروایا ہے اپنی سیاسی حریفوں سے کہ وہ سیاست کے کھیل کو جانتے ہیں، اور تمام چیلنجز کے باوجود انہوں نے اپنا 5واں سال جو ہے اپنی حکومت کا اس میں وہ داخل ہو گئے ہیں۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالم امور کے ماہر اور خاص طور پر پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے جناب علی جعفر زیدی صاحب کی خدمت میں. زیدی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی زیدی صاحب، جیسا کہ آج صدر نے خطاب کیا اور کہا کہ آنے والا سال انتخابات کا سال ہے اور ہماری حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ انتخابات منصفانہ اور شفاف ہوں گے، اور جس طرح سبھی جاوید صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سیاست میدان سیاست کے ایک ماہر اور مجھے ہوئے کھلاڑی ثابت ہوئے، یعنی صدر زرداری، تو کیا یہ جو ان کی 5 سالہ کامیابی رہی کہ حکومت کو چلا لے گئے، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ 1 سال 2 سال یا 3 سال سے زیادہ دوام نہیں لا پائے گی حکومت، تو یہ جو کامیابی ہے قطع نظر اپوزیشن جو الزام لگاتی اس سے ہٹ کر، تو یہ کامیابی کیا آئندہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ فائدہ پہنچا سکے گی؟
جی میں اس بات کو واقعی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسا عمل جس کو جمہوریت کا نام دیا گیا ہے اور جس میں امریکی مفادات کے محافظ جو ہیں وہ انتخابات کے ذریعے الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، آ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا پورا مدت بھی پوری کی ہے اور یہ پروسیس چلا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کے عوام کو کچھ ملا یا نہیں ملا، لیکن یہ ضرور ملا کہ ان کے جو منتخب کردے جو نمائندے تھے اپنے اپنے علاقوں سے وہ پارلیمنٹ میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے عوام کی یا قوم کے حوالے سے کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ وہ سیاسی عمل جس کو سو کالڈ سیاسی عمل جو اقتدار میں مفاد پرست طبقات کو پاکستان میں آ کر بیٹھنے کا موقع دیتا ہے، وہ بہرحال ایک پروسیس چلا ہے اور یہ آگے بھی چلے گا. بات یہ ہے کہ یہ کوئی آئسولیشن میں معاملہ نہیں ہے، پاکستان کے وہ تمام سیاسی لیڈر جو امریکی سامراج کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوں یا وہ فوجی حکمران جو امریکی مفادات کا تحفظ کرتے ہوں وہ حکمرانی میں رہتے ہیں، اور آج اگر امریکہ اپنی مکمل سپورٹ زرداری حکومت کے پیچھے سے اٹھا لے تو پھر ملک کے معاملات کسی اور طرف چلے جائیں گے، لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک معاملہ چلا ہے، انتخابات ہوں گے، ایک پروسیس چلے گا، اور انتخابات کے نتیجے میں ظاہر ہے ایک جاگیردارانہ معاشرہ ہے، اور اس معاشرے میں جاگیردار یا ان کے بیٹے یا ان کی اگلی نسلیں وہی الیکٹ ہو کر آتی ہیں، آئیں گی، وہاں پر بیٹھیں گی، اور پھر ان کے آپس میں مفادات کی رسہ کشی کو وہاں کی عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، یا دانشور کی یہ شاید اس رسہ کشی میں عوام کو کچھ مل رہا ہے، وہ نہیں ہوتا، ان کے اپنے ذاتی مفادات کی رسہ کشی چلتی ہے، وہاں پر 8ویں ترمیم ہے یا 18ویں ہے یا 20ویں ہے، وہ سب کی سب اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کا ان حکمرانوں سے کوئی تعلق نہیں، ان حکمرانوں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسائل وہیں کے وہیں ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، خواہ وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکمرانی میں ہوں، ان کا جھگڑا آپس میں بندر بانٹ کا جھگڑا ہے جو نظر آتا ہے، اور پھر وہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا میں بہت آزاد ہے، اس کا ایک بہت پازیٹو رول بن گیا ہے، لیکن وہاں پر کچھ اینکر چند سیاسی مرغے سامنے بٹھا کر وہ مزہ لیتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، ان کو لڑا کر انجوائے کرتے ہیں، اور جو وہاں کی مڈل کلاس ہے جو کہ ایک اپرچونسٹ کلاس ہوتی ہے وہ ان مباحث کو بڑے غور سے سن کر انہی کو پھر محلے گلیوں میں ڈسکشن کا موضوع بنا لیتی ہے، تو عوام کا اس انتخابی عمل سے، اس حکمرانی کے طریقہ کار سے، اس معاشرتی نظام سے جو کہ استحصال پر مبنی ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
شکریہ، میں عوام پھر آ جاؤں گا.
روزگاری، مہنگائی، غربت، مفلوق الحالی کا جو عالم ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، ملک کی جو سوورینٹی ہے وہ سب کے سامنے ہے، یہی پارلیمنٹ ऐलान करती है कि अब ड्रोन हमले नहीं होंगे, सब मिलकर करते हैं। दूसरे दिन ड्रोन हमले होते हैं
जी। जहीजा मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में।
तो ये ऐसे ही एक जालसाजी है, ड्रामेबाजी है, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से ये मामला और भी आगे चलता जाएगा जब तक अमेरिकन इंटरेस्ट वहाँ पर है और उसके मुलाजमीन वहाँ मौजूद हैं, उसके मफादात का।
मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में जैदी साहब। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सेनेटर सफदर अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी।
सफदर अब्बासी साहब, मुश्तरका पार्लियामान का इजलास हुआ, आप भी यकीनन मौजूद रहे होंगे, क्या माहौल था वहाँ पर, कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए जी, मैं क्लियर कर दूं, मैं सेनेट से रिटायर हो गया हूँ 12 मार्च 2012 को।
अच्छा अच्छा।
तो हाँ जी, मेरी रिटायरमेंट हो चुकी है, मैंने कुछ 15 साल सेनेट के अंदर सर्व किया जी।
जी जी।
और उसके बाद जो है मैं रिटायर हो चुका हूँ, और आज का इजलास था, लेकिन क्योंकि 17 को हुआ तो उसमें मैं शरीक नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने तकरीर जो है किसी हद तक साहब की सुनी है।
अंदर से ना सही, बाहर से क्या माहौल देखा आपने?
देखिए जी, बुनियादी तौर पर माहौल तो ऐसे था जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि जी ऑपोजिशन एहतजाज करेगी और सदर साहब जो है ना अपनी जो भी जो उनकी कामयाबियां जिसको समझते हैं वो बयान करेंगे और हुकूमत की कामयाबियां बयान करेंगे, तो वो उसी तरह ही मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्ट चला, जिस तरह स्क्रिप्ट चलेगा। लेकिन बुनियादी तौर पर जो है ना मैं समझता हूँ कि जो एक सदर साहब के आखिरी साल की स्पीच होती है और जिसके अंदर जो है ना ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी वो इस वक्त जो है ना एक बढ़ती हुई जो सियासी अदम इस्तेकाम है और एक बढ़ता हुआ जो मौशी क्राइसिस है उसको जो ना वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये जो पोलिटिकल क्राइसिस खास तौर पर जो एक सीरियस किस्म की सब कन्फ्रंटेशन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान नजर आ रही है और एक बड़ा गंभीर किस्म का जो है एक इकोनॉमिक मौशी जो है इस वक्त बहरान नजर आ रहा है, जिसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी, बिजली का मसला, गैस का मसला, पानी का मसला, ये तमाम चीजों को जो है ना गालबन जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद वो एड्रेस करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्होंने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। और लेकिन बहरहाल ये बात जरूर है कि जी 5 साल के अंदर जो ये 5 राउंड का खिताब था वो यकीन जो है ना उनकी क्रेडिट जाती है, प्लस पॉइंट जाता है, प्लस जो ना इस ऐवान ने या इस पार्लियामेंट ने जो आइन के अंदर जो पैचवर्क था उसको जो रिमूव करने की कोशिश की है और एक ऐसा एनएफसी अवार्ड दिया है जिसके जरिए प्रोविंसेस काफी हद तक जो है ना फाइनेंशियली इम्पावर्ड हुए हैं, तो वो जरूर एक जो कामयाबियां हैं उनकी उन्होंने वो बयान की। लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इस वक्त जो सूरतहाल है वो एक शदीद किस्म के सियासी और मुआशी बहरान की तरफ जो है ना पॉइंट आउट कर रही है, उस पर जो ना मैं मेरी नजर में वो काफी उन्होंने तश्नगी उनकी बातों में तश्नगी रही, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में खासतौर पर जो वजीर आजम साहब का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो केस चल रहा है और उसके साथ साथ जो मुआशी हवाले से जो मसाइल चल रहे हैं और एक एक, एक, एक लगता है कि एक टकराव होने जा रहा है सुप्रीम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, इसके अंदर जो है ना मैं समझता हूँ कि आप जो जो एड्रेस करना चाहिए जिस तरीके से चीजों को वो शायद गालबन सदर साहब बावजूद उस पर उन्होंने ज्यादा वजू नहीं दी।
जी सदर अब्बासी साहब, अपोजिशन खासतौर पर मुस्लिम लीग नून ने और इसी तरह खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वॉकआउट किया इजलास से, तो मुस्लिम लीग नून की तो बात समझ में आती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब या टोटल अपोजिशन के रवैये पर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए जी, क्योंकि काफी अर्से से ऐसा नजर आ रहा था कि जी अपोजिशन के बारे में एक जो है तस्वुर ये था कि जी वो हुकूमत के साथ जो है ना सिस्टम को बचाने के लिए जो है वो हुकूमत को बहुत ज्यादा कंसेशन दे रही है, तो यकीनन उस इंप्रेशन को गालबन अपोजिशन भी वो दूर करना चाहती थी, और 2-3 चीजें नजर आई हैं इसके अंदर। एक तो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बड़ा खुल के अपोजिशन का साथ दिया, और इससे पहले भी सेनेट के अंदर भी पिछली दफा जो एक काफी जो है ना एक टकराव रहा लीडर ऑफ अपोजिशन के मसले पे, जिसमें मौलाना गफूर हैदरी साहब जो है ना कैंडिडेट के तौर पर सामने आए, तो उस वक्त भी जो है PMLN और JUI के दरमियान काफी एक जो है ना मुखासमत रही, लेकिन एक इस दफा उन्होंने जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट के अंदर वो भी उन्होंने कंसीड किया इसहाक डार साहब को, और आज भी नजर ये आया कि जी वो अपोजिशन के साथ या PMLN के साथ काफी मुकम्मल अंदाज में खड़े रहे, तो इसे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जी अब मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो एक प्रश्न था कि जी वो सदर साहब को बचाने के लिए हर वक्त आगे आ जाते हैं, कारण वो खुद भी देख रहे हैं कि जी आने वाले दिनों में जब जैसे जैसे हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वैसे वो भी यकीनन जो है ना अपने आप को जो डिस्टेंस करेंगे हुकूमत से, और हुकूमत की जो बहुत सी जो कमजोरियां हैं या खामियां हैं उन पे उनमें वो हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। तो इस तरह मुझे महसूस हो रहा है कि जो अपोजिशन की जो इस करंट सिचुएशन की है कि जी कम अज कम PMLN जो जितने भी बलोच तशखस बहुत कम तादाद में क्योंकि उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया था, मौलाना फजल रहमान साहब, आफ्ताब शेपा साहब, ये यकीनन जो है ना अब इस वक्त अपोजिशन में इकट्ठे नजर आ रहे हैं।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर आज उनका आपकी खिदमत में। जावेद सिद्दीक साहब, सदर जरदारी ने अपने खिताब में तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जमहूरियत के इस्तेकाम और उसकी मजबूती के लिए उनका साथ दिया। तो 5 साल तक हुकूमत चला ले जाना और ऐवान सदर में सदर जरदारी का बहस थे सदर या मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेर क्यादत हुकूमत का बाकी रहना, क्या आप नहीं समझते कि इसमें खुद अपोजिशन का और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून का भी एक अहम रोल हो सकता है, खास इसीलिए कि जमहूरी निज़ाम और सिस्टम चलता रहे?
जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जब ये हुकूमत बनी उस वक्त उसने कुछ अरसे के लिए चंद माह के लिए मिसाक़ी जमहूरियत के तहत और जमहूरियत की जो इस्तकाम के लिए उन्होंने वफाकी काबीना में भी अपने चंद अरकान भेजे थे और ख़ासतौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री या वजारत ख़जाना जो है वो PMLN को ही दी गई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई। और ये जो एक इतिहाद था या एक खुशगवार माहौल था वो ज़्यादा देर इसलिए ना चल सका कि उनका मुतालबा था कि फौरी तौर पर उन जजों को बहाल किया जाए जिन्हें जनरल मुशर्रफ ने रिमूव किया था या अपने ओहदों से हटाया था। वो एक नुक्ता ऐसा हो गया जिसकी वजह से इनके दरमियान एक इख्तलाफ पैदा हुआ, शकरंजी हुई और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में चली गई। और लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक तो पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 60% पंजाब जो है वो पाकिस्तान है, तो वहाँ पे उनकी हुकूमत है और उन्होंने ये हुकूमत जो है वो चलाई है और बावजूद है कि एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और नारेबाजी के ये हुकूमतें जो है चलती रही हैं। एक एक मरतबा दरमियान में गवर्नर रूल भी लगाया गया, जरदारी साहब ने लगाया था, लेकिन वो मामला भी बाद में ठीक हो गया और शहबाज शरीफ जो है पंजाब के वजीर आला के तौर पर वापस आ गए। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने जिसे बाज़ औक़ात पाकिस्तान के प्रेस में और पाकिस्तान के सियासी हलकों में कहा गया कि एक फ्रेंडली अपोजिशन है, एक दोस्ताना अपोजिशन है, और उन्होंने इस ताने के बावजूद मैं समझता हूँ कि सियासी निज़ाम को आगे बढ़ाने में उन्होंने ज़रूर एक किरदार अदा किया है। और जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा कि ये हुकूमत जो है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इब्तदाई तौर पर बहुत कम अरकान थे, 92 के करीब उनके थे और उसके बाद उन्होंने फिर बाकी सियासी जमातों के साथ MQM और JUI और मुस्लिम लीग Q और दूसरी जमातों से मिलकर इन्होंने ये हुकूमत जो बनाई है, लेकिन रफ्ता रफ्ता इन्होंने ये जो ख़ासतौर पर सदर जरदारी हैं उन्होंने बड़े स्किलफुली बड़ी महारत के साथ अपने इन साथियों को साथ रखा। जैसे मैंने कहा कुछ अरसा दरमियान में इनके दरमियान इख्तलाफात होते रहे, MQM एक दफ़ा बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है उससे अलग हो रहे हैं और उन्होंने अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए दरख्वास्त भी दे दी थी, लेकिन उसके बाद फिर जरदारी साहब ने अल्ताफ हुसैन को मना लिया और फिर वो वापस हुकूमत में शामिल हो गए। अभी भी MQM का एक तरह से एहतजाज जारी है कराची में बत्ताखोरी के हवाले से, लेकिन फिर ये भी मैं आपको बताता चलूं कि MQM ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आज सदर के इस मुश्तरका अजलास से खिताब में का बायकॉट करना था, लेकिन उन्होंने ये बायकॉट नहीं किया और मैं समझता हूं कि रातों रात सदर जरदारी ने फिर उनको एक तरह से अपनी तरफ जो है वो अपनी तरफ बुला लिया और उनको अपने से दूर नहीं जाने दिया। तो ये उनकी इसी तरह की कामयाबी है कि उन्होंने इस कोअलिशन को बहुत बड़ी मेहनत के साथ इकट्ठा रखा और आज वो 5वें साल में दाखिल हो रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी जो मौशी तौर पर पाकिस्तान जो है सुधर नहीं सका इनसे, इसलिए कि इनके पास कोई मैं समझता हूँ कि एजेंडा नहीं था और इसके अलावा इन्होंने अपने जो इत्तेहादी हैं जो इत्तेहादी जमातें कोअलिशन जो है उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको उन पर समझौते करने पड़ते हैं, बदनवानी जो है वो फैल गई है बहुत ज़्यादा और बहुत सा जो वफाकी काबीना है वो इस तरह काम करती रही है जैसे लग रहा था कि बहुत सीरियसली या संजीदगी के साथ काबीना जो है उन माशी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रही जो पाकिस्तान के आम आदमी को मुतासर कर रहे हैं। तो कुछ इन्होंने कमजोरियां दिखाई हैं, इसके अलावा इन्होंने जो है करप्शन के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अदलिया के साथ इनका तसादुम हो गया और उस तसादुम के खात्मे के लिए भी कोई कोशिश नहीं हुई। जो NRO के हवाले से फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो फैसला आया कि आप स्विस अदालतों को खत लिखें कि वो दोबारा मुकदमात शुरू हों, उस पर खास तौर पर इस वक्त जो है बहुत बड़ा एक तनाज़ा चल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो इन अदालत का नोटिस भी आया हुआ है। 21 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जो है उनको कहा गया कि वो खुद ही अपना वकील उनका पेश हो के वजाहत करे और कि क्या सूरत हाल है। और इस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन्होंने एक दफ़ा फिर डायरेक्शन दी है, एक हदायत दी कि वजीर आजम जो है वो कानूनी मशवरे को तर्क करके छोड़ के उसको नज़रअंदाज करके खुद खत लिख दें स्विस अदालतों को। तो जिस पर वजीर आजम ने कहा कि वो कभी खत नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, सदर को आइन के तहत जो है इस्तस्ता हासिल है और मैं आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा चाहे सुप्रीम कोर्ट मुझे तोहीन अदालत में जेल भेज दे। तो ये एक सिनेरियो है जो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के आखिरी साल में ये दाखिल हो चुके हैं। एक तासुर यह है कि वजीर आजम जो है वो उनकी कुर्बानी दे दी जाएगी और शायद सुप्रीम कोर्ट उनको तोहीन अदालत में सजा दे दे, फिर ऐसा हुआ तो वो डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं और उसके लिए एक प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। और यहाँ ये कहा जा रहा है इस्लामाबाद में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इतादियों ने नया जो वजीर आजम है खुर्शीद शाह उसका भी एक तरह से उन्होंने फैसला कर लिया है कि अगर वजीर आजम गिलानी को अदालत सजा देती है और उस सूरत में उनको एक नया प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करना पड़े तो वो सिंध से खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो वजीर आजम होंगे।
ये बहुत शुक्रिया, मैं फिर
अगले जो चंद माह हैं बहुत अहम हैं, बजट भी ये मई में पेश करने वाले हैं और उस बजट में इनकी कोशिश है कि अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, चाहे उसके लिए वसाइल है या नहीं ये अलग मसला है, लेकिन इनकी जो नीयत है या इनकी प्लानिंग है वो ये है कि हम अगले मालियाती बजट के अंदर लोगों के बहुत से मसाइल दूर करने के लिए हम कम अज़ कम ऐलान तो करेंगे और वो एक तरह से बजट के लिए जो अगले साल का बजट है वो एक तरह से इनका मंशूर भी होगा, इनका पार्टी प्रोग्राम भी होगा। तो इस तरह की जो एक सूरत हाल है इस वक्त, लेकिन बहरहाल जूं तू करके पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने 5 साल जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए हैं और इसको एक कामयाबी समझा जाता है। मैं ये भी कहूँगा कि इस हुकूमत ने कुछ और चीज़ें भी की हैं, मसलन आइन जो है 73 का उसको बहाल किया है, उसमें बहुत सारी जो डिस्टॉर्शंस थी या उसको मसख किया गया था जनरल मुशर्रफ के दौर में, उससे पहले ज़ियाउल हक के दौर में उसको ख़त्म किया गया है। और 18वीं तरमीम के जरिए मुतफ़िका तौर पर वो तमाम मौजूहात या तमाम वो सब्जेक्ट्स जो कि सूबों को दिए जाने थे आइन के तहत वो वापस कर दिए हैं, सूबों को दे दिए,
प्राइम मिनिस्टर
को मुंतकिल कर दिए और इसके अलावा इस तरह के कई इकदाम किए गए हैं और NFC अवार्ड जो है इन्होंने वो भी दे दिया है और उसको ज़्यादा फाल बनाया। तो कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने बुनियादी की हैं जो कि आम लोगों के फायदे की तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि महंगाई खत्म नहीं हुई,
मैं फिर आ जाऊंगा, बहुत शुक्रिया आपका।
खात्मा नहीं हुआ, कोई लोगों को इकोनॉमिकली रिलीफ नहीं मिला, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने आईनी एतबार से कानूनी एतबार से काफी अहम पेशरफ की है जिसको यकीनन सराहा जाना चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया आपका। अली जाफर साहब, आप देखें अभी जैसे कि जावेद सिद्दीकी साहब और इससे पहले सरदार अब्बासी साहब ने इशारा किया हुकूमत और अदलिया के दरमियान तसादुम का, एक अरसे तक खामोश रहने के बाद दुरुस्त कबल भावलपुर के एक जलसे में वाशिगाफ और दो टोक अल्फाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मैं खत नहीं लिखूंगा, ये आइन से गद्दारी है। एक अरसे तक खामोश रहने के बाद बरमला इस तरह का इनकार किस बात का पता देता है?
जी अभी ये तो मालूम नहीं आइन से गद्दारी है, बज़ाहिर तो लगता है कि ये आसिफ जरदारी से गद्दारी है, वो ये गद्दारी नहीं करेंगे और उन्होंने इसका ऐलान भी किया है। इस सूरत में मैं समझता हूँ कि जो अदालत है वो तो अपने फैसले पर नज़र सानी करने नहीं जा रही, खत लिखने के बारे में जो उनका फैसला है वो तो उसको वापस या उसमें कोई तरमीम वो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं इन्होंने भरमला ऐलान कर दिया है कि मैं अदालत का हुक्म नहीं मानूंगा। अब वो उसमें ये फिक्रे भी आए कि मैं खंजर अपने जो पार्टी का लीडर है उसको खंजर नहीं घोंपूंगा और यारी यारी निभाने की बात है और दोस्तियां और ये सारे जार्गन्स या ये जितने भी अंदाज़ सियासत कहें या दोस्ती के अंदाज कहें या वफादारी के अंदाज कहें, ये एक जागीरदाराना माशरे की आउटकम है। और मुझे याद पड़ता है जब मैं पाकिस्तान में था तो वहाँ एक ड्रामा चल रहा था जिसका नाम था वारिस। उसमें जो जागीरदार का कैरेक्टर है वो ये अपना बेटा जब उसका लाहौर जाता है तो वो उसको ये समझाता है कि बेटा वहाँ लाल रंग की बत्ती होगी जो आपको रोकेगी कार को, तो आपने परवाह नहीं करनी, आप इतने बड़े जागीरदार के बेटे हैं तो आपने वो लाल बत्ती के ऊपर अपनी गाड़ी को नहीं रोकना। तो ये हमारे जागीरदारा माशरे का एक अंदाज है, रहन सहन है कि कानून की बालादस्ती को हमने तस्लीम नहीं करना, कानून की खिलाफ वर्जी को वो अपने अपना ताकत का मेराज समझते हैं, उसका इजहार भी करते हैं। तो एक ऐसा माशरा जिसके अंदर जागीरदाराना पार्लियामेंट है, जिसकी जमहूरियत भी जागीरदाराना जमहूरियत है, और उस माशरे में
जैदी साहब माफ कीजिएगा, जैदी साहब
आउटकम भी आपने देखा है, जो कंपोजिशन है इस वक्त पार्लियामेंट की वो क्या है। और मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ सफदर अब्बासी साहब 15 साल रहे और इन जैसे नौजवान लोगों को इस सेनेट में फिर आना चाहिए था, लेकिन वो चूंकि ज़ाती वफादारियों पर मबनी है सारे फैसले, इसलिए जागीरदाराना माशरे में ज़ाती वफादारियाँ बहुत मैटर करती हैं। चुनाचे वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि मैं नहीं मानता, ये एक ज़ाती वफादारी की बात है जिसके नतीजे में शायद फिर उन्हें जेल भी जाने के लिए वो तैयार हों, और उनका असल जो चेहरा है वो तो सब दुनिया जानती है कि ये भुट्टो साहब के खिलाफ रहे, ज़ियाउल हक के साथ रहे, आज ये तो ये सारा मफाद परस्ती का मामला है। इतने अरसा इन्होंने वजारत उज़्मा को भी मज़ा लूट लिया है, तो अगर 2-4 महीने 6 महीने जेल वेल चले जाएंगे तो इसका, और इनकी जो दुनिया भर में शोहरत है इनके माल वाल बनाने की और इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सबके सामने है, तो ये सब कहना कि ये बहुत कोई बहादुर है, कोर्ट के फैसले के सामने डट गए हैं, यारियां निभा रहे हैं, ये हमारे यहाँ एक तो चीज़ों को अजीब अंदाज से देखने का रवैया शुरू हो गया है, वो बिल्कुल सतही अंदाज है। माशरा कहीं और जा रहा है, हुक्मरान तबकात कहीं और खड़े हैं।
जैदी साहब, मैं ये सवाल आप ही से करना चाहूंगा और मुख्तसर जवाब चाहूंगा। जैदी साहब,
इंतजामिया का बिलखसूस जी इस बारे में,
जैदी साहब आप कह रहे हैं कि ये कानून से गद्दारी नहीं खत लिखना, लेकिन जब इस्तेसना असेंबली या पार्लियामेंट दे तो क्या वो कानून नहीं बनता?
देखिए, ये कानून कानून पे मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि मेरे पास मैं लीगल माहिर नहीं हूँ, लेकिन जो इस्तेसना है वो तो आइन के तहत है, और आइन के तहत इस्तेसना मुल्क में है सदर को, लेकिन वो तमाम अकदामात जो के सदर होने से पहले किए गए हों और उस हवाले से जो मुकदमात दुनिया में चल रहे हों, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सदर होने से पहले के जो मामलात हैं वो उसमें इस्तेसना शायद उस तरह से नहीं है। ये तो कानूनी माहिर ही बता सकेंगे, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि वो तमाम एक्शंस जो कि सदर बनने से पहले के हों और वो कोर्ट्स जिसमें वो मुकदमात जिनमें यानी इनको सज़ा भी 6 महीने की हो चुकी हुई है स्विस कोर्ट में जिसके खिलाफ अपील है, तो वो तो उस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए उस सारे मामले को। और इस पे जो अभी जो फ्रैंको माइकल का कमेंट्स भी आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये केस जो है ये इस वजह से आगे नहीं चल पाया कि वहाँ की हुकूमत ने तआवुन नहीं किया था, और अगर हुकूमत ये खत लिखती है तो ये बात ओपन हो जाएगी और वो 15 साल का जो जो वक्त गुजरने का मामला है वो इस केस पर लागू नहीं होता
जी।
और स्विस केस में ये इस केस में ये केस दोबारा से शुरू होगा। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर इस दौरान वो जो पैसे फ्रीज होकर डी फ्रीज हुए थे, अगर वो पैसों में से एक पैनी भी इधर से उधर कहीं गई है तो उसका एक नया चैप्टर शुरू होगा और वो एक नया जुर्म की शक्ल में वो केस बनेगा, क्योंकि जो पैसे हैं वो
ये बहुत शुक्रिया आपका जैदी साहब, मैं फिर हाजिर हूँगा आपके समक्ष।
ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हुई है ये एक नया चैप्टर खुल जाएगा। चुनाचे ये खत ना लिखना जो है इसमें 6 महीने की कुर्बानी और खत ना लिखना ये आसान बात है, बजाय इसके कि नए चैप्टर्स खोले जाएं, नई पिंडोरा बॉक्स खुले। लेकिन अदालत का फैसला तो जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको तो फिर उसको सुनना पड़ेगा ना
जी। बहुत शुक्रिया,
चले जाते हैं तो फिर ये फैसला तो अदालत का अपनी जगह मौजूद है कि खत लिखा जाए
जी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। सदर अब्बासी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये खत लिखने और ना लिखने के बारे में मुतजाद बातें और ख्यालात और नजरियात सामने आ रहे हैं। हुकूमत का एक तरफ कहना है कि ये आईन की खिलाफ वर्जी है, और दूसरी तरफ हुकूमत ही के लोगों का ये कहना है कि जहां इतने दिन तक 6 साल 7 साल 10 साल 15 साल तक सब्र किया, चंद महीने की बात और है, उसके बाद सदर जरदारी शायद सदर न रहे, उसके बाद उनके सिलसिले में जो भी वजीर आजम वो खत लिख देगा। और आइनी माहिरीन का ये कहना है कि ये फैसला, ये खत लिखना या ना लिखना ये सियासी फैसला है, और अगर खत लिख दिया जाता है तो ये आइन से गद्दारी नहीं है। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये तो वजीर आजम साहब ने जो बात की है वो तो यकीनन बहुत कम लोग उसको तस्लीम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो ना ऑर्डर को मानना कोई आईन के खिलाफ वर्जी होगा, उसका आर्टिकल 6 लगेगा। मैं समझता हूँ ये तो वजीर आजम साहब ने अपनी प्रधानमंत्री जान छुड़ाने के लिए जो है इस किस्म की बात की है। बुनियादी बात वहीं पर ही है कि जो एक मुस्तकिल एक सियासी अदम इस्तेकाम जो पिछले काफी अर्से से चल रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा, और लग ऐसे रहा है कि जी जिस तरह के अभी वजीर साहब ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट भी देख अब अपना जो ऑर्डर दे चुकी है वो बारह उसको रिपीट कर चुकी है, और अब मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत में अगर वजीर आजम साहब डिटर्मन है कि जी नहीं उन्होंने वायलेट करना है तो फिर यकीन जो है एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आनी है, और उसमें लगता है ये कि जी वो कन्विक्शन की तरफ होगी। तो अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर अब बुनियादी तौर पर उनके पास दो राय बचती हैं। एक तो ये कि जो पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा मकाबरीन की तरफ से कहा जा रहा है कि जी वो नाहल तस्वर नहीं होंगे बल्कि नाहली के लिए एक अलग प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये कि जी एक कन्विक्टेड वजीर आजम बैठा रहेगा और नाहली का जो भी पीरियड है महीना 2 महीना 3 महीने जितना लगता है वो अपनी वजारत उस्मान में रहेगा। तो वो एक बड़ी ही जो ना अजीब किस्म की सूरत हाल होगी अगर इस किस्म की जो तस्वर है कोई भी हुकूमत के अंदर। और दूसरा ये है कि जी वो इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर चले जाएं और जो है कोई दूसरा वजीर आजम मुंतखब हो, तब उसके अंदर भी यकीनन एक कॉलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की इतनी मेजोरिटी नहीं है, उसके बाद जो है एक नया वजीर आजम मुंतखब करने के लिए क्या सूरत पैदा होती है वो भी एक जो है बड़ा मैं समझता हूँ कि एक सियासी तौर पर जो अदम इस्तेकाम है उसको बढ़ाएगा। तो मैं ज़ाती तौर पर यह महसूस कर रहा हूँ कि जी इससे ये जो अब चीज है वो अब यहाँ पे रुकने नहीं जा रही, ये जो एक जो सूरत हाल है वो जो ना खराब से खराब पर होती नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ कि गालबन आज ऐसा मौका है कि जी जितनी भी ऑपोजिशन जमाते हैं उनके साथ हुकूमत को खुद बल्कि सदर साहब को खुद जो है ना बैठ के एक प्रोग्राम बनाना चाहिए फ्रेश इलेक्शन का, क्योंकि उसी के नतीजे में ही पाकिस्तान इस बुरान से अल्टीमेटली निकल सकेगा। अगर फ्रेश इलेक्शन नहीं होते और जो है इसको खींचा जाता है एक साल और, तो मैं समझता हूँ उस दौरान जो ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले दिनों में इसकी जो कवाहतें हैं वो पाकिस्तान की मुआशी और पाकिस्तान की सियासी सिस्टम पे आने शुरू होंगी। और मेरी नजर में वो जो ना जो एक कोशिश रही है कि जी 5 साल ये हुकूमत पूरी करे और उसके बाद जो इलेक्शन हो और ट्रांसफर ऑफ पावर हो उसके अंदर फिर एक रखना आ जाए पड़ जाएगा। और मेरी नजर में इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जी इस पर जो भी स्टांस लिया है, मतलब मैं नहीं समझता कि वो सही स्टांस है, क्योंकि मैं बारह इस बात को कह चुका हूँ कि जी ये जो केसेस हैं अब जो है मेरिट पे डील हो सकते हैं, अब जो है सस्ता या इससे आप कितना भी ले लें टाइम आप गुजार लें, लेकिन अल्टीमेटली ये चीजें मेरिट पे डील होंगी और मेरिट पे ही सदर जरदारी साहब को अपनी जो है ना कि ये केसेस को कंटेस्ट करना पड़ेगा। मेरी नजर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर वजीर आजम साहब कोई भी फैसला करते हैं, चाहे उनकी नाइली को तस्वीर नहीं किया जाता, चाहे वो अगर रिजाइन भी कर जाते हैं और एक नई गवर्नमेंट आती है, वो मामला जो ना ये जो अदम इस्तेकाम है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बेहतर ये होगा कि जी सदर जरदारी साहब खुद अपोजिशन की जमातों से बात करके एक नए इलेक्शन की तरफ जाएं। अब चाहे सेनेट भी इलेक्शन भी हो गए हैं, बजट भी मेरे साल में आ जाएगा, और अगर वो नेगोशिएट करते हैं नए इलेक्शन के लिए तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर अमल होगा बनस्बत इसके कि जी हम इस रोल में छपे रहे।
जी सफदर बाजी साहब, अगर हमारा मौजूद तो पाकिस्तान की सियासत और अदलिया और हुकूमत के दरमियान तसादम है, अगर इजाजत दें तो आपसे मुतालिक हमारे बहुत से नाज़रीन जानना चाहते होंगे कि आइंदा जो इलेक्शन होने वाला है उसमें आपकी पोजीशन क्या होगी मोहतरमा नाइस खान की, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहेंगे या अलग कोई हम ख्याल ग्रुप वगैरह बनाना चाहेंगे?
देखिए जी, अभी तक तो हमारा फैसला यही है कि हम पार्टी के अंदर हैं और पार्टी के अंदर ही रहेंगे। हम ये समझते हैं कि हमारी जमात है और जो हम इस जमात को किसी भी कीमत पे या किसी भी सूरत में छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। हमारे इख्तलाफ जरूर है और हमने एक उसूली बुनियाद पर इख्तलाफ किया है और हमने एक उसूली बुनियाद के ऊपर पार्टी के अंदर जो फैसला साजी का अमल है उसको हम समझते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है। हम ये समझते हैं कि जी मोहतरमा की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जनरल सूरत हाल इतनी फरोही अंदाज में डील की गई है कि ये आने वाले दिनों में इलेक्शन का बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। हम ये महसूस करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गैप पार्टी के आम कारकुन और जो क्यादत है उसके दरमियान पैदा हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इन उसूली इख्तलाफात को भी जाए रखते हुए हमारी ख्वाहिश अभी यही है कि हम पार्टी के अंदर रहें और पार्टी के अंदर ही बैठ के जो है अपनी जो भी जो पोजिशन है वो लें और हम पार्टी के अंदर बैठ के फाइट करें। इस जो पार्टी को खानदानी जागीर समझ के चलाया जा रहा है, हम पूरे तौर पर उसके खिलाफ है और मैं समझता हूँ कि हमारा हक पहुंचता है, हमारा हक है कि हम अपनी जमीर के मुताबिक उसकी आवाज उठाएं और हम कोशिश करेंगे हम पार्टी के दीगर साथियों दोस्तों को कन्विंस करेंगे कि अगर आप इस अंदाज में पार्टी को मजीद चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये पार्टी तितर बितर हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सफदर बाजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें नियत किया नवाजिश आपकी। जावेद सदीक साहब, अदलिया का ये कहना है जैसा कि अभी आपने या जदी साहब ने इशारा किया अपनी गुफ्तगू में कि बगैर एडवाइस के ही वजीर आजम खत लिख दें, तो इस पर हुकूमती हलकों का ये कहना है अदलिया के सिलसिले में कि अदलिया हर हाल में चाह रही है कि सदर जरदारी साहब के सिलसिले में खत लिखा जाए और अदलिया के इस रवैये पर हुकूमती हलके बहरहाल तनकीद कर रहे हैं, तो ये बगैर एडवाइस के खत लिखना ये जो अदलिया का मुतालबा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ये जो एडवाइस का मामला है और ये जो इस्तेस्ताद का मामला है इस पे पाकिस्तान में जो ज्यूरिस्ट्स हैं या कानूनदान हैं उनमें दो आरा पाई जाती हैं। एक तो वो है जो एतजाज आसन स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी या इस्तेस्ना हासिल है अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क, और यही कंटेंशन या यही मौकफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इख्तियार किया है एतजाज ने, ताज़ा तरीन जो मौकफ है और वो वज़ीर आज़म की तरफ पेश हो रहे हैं और 21 को भी वही पेश होंगे। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि जब तक ये सदर हैं इनको इस्तेस्ना हासिल है और इनके खिलाफ कोई मुकदमा जो है वो उसकी वो इनिशिएट नहीं हो सकता, उसको शुरू नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये जो खत लिखना है ये उस इस्तेस्ना के मुतसादम है उस आइन की आर्टिकल 248 के तहत। ये इनका एक इस्तदलाल है और मैं समझता हूँ कि इसमें वजन भी है और बहुत से ज्यूरिस्ट जो हैं वो इस बात पर मुतफिक है। लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थाट भी मौजूद है जो कहता है कि इस्तस्ना जो है वो मॉरल ग्राउंड्स पे कहते हैं कि एक शख्स जो पाकिस्तान का सदर है इतने आला अहदे पर वो फायज है और अगर उसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप ज़रूर खत लिखें और एग्जेक्टिव को या प्राइम मिनिस्टर को ये खत लिख देना चाहिए, ये एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो सदर के साथ के बारे में जो ये केस एनआरओ के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में आया है खत लिखने वाला, इस पर एक तरह की सियासी माजराई भी इस पर शुरू हो चुकी है। जो सदर जरदारी के और पीपल्स पार्टी के मुखालिफीन हैं वो ये चाह रहे हैं कि हर सूरत में खत लिखा जाए ताकि सदर जरदारी के लिए मुश्किलात पैदा हों, और वो इससे आगे जाकर ये कहते हैं कि वो 60 मिलियन डॉलर्स जो इस वक्त स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं उनको वापस लाया जाए, और उनकी जो अपोजिशन है उसने इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया है और बहुत ज़्यादा इसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने मकासद के लिए, इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट वो जैसे मैंने पहले कहा वो कहते हैं कि जब तक सदर जरदारी इस ऐवान सदर में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के सदर हैं, उनको ये इस्तेस्ना या ये रियायत हासिल है और उनके खिलाफ कोई ये जो है एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई केस नहीं खोला जा सकता, तो ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पे मौजूद है और दोनों जो मकातब फिक्र हैं उनके दरमियान एक तसादम है और इसमें सियासी उनसर भी शामिल हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जो है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़्यादा इस मामले में हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है और ये ज़रूर वो चाह रही है कि खत ज़रूर लिखा जाए और शायद वो इंतज़ार नहीं कर पा रहे या नहीं करेंगे कि जब सदर मुल्क के सदर ना रहें तो उस सूरत में फिर खत लिख दिया जाए, क्योंकि ये सदर साहब खुद भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अगर मैं सदर नहीं हूँगा तो उस वक्त तक आप बेशक मेरे बारे में खत लिख दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, अगली हुकूमत लिख दे तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। लेकिन उनके सियासी मुखालिफिन जो है वो बहुत बेताब है, वो चाहते हैं कि अभी खत जो है वो लिख दिया जाए और ये मामला जो है, ये जो केस है इसको दोबारा ओपन कर दिया जाए। तो एक तरह से ये जो मामला है ये सियासी कश्मकश का सबब भी बन चुका है और इस पर पाकिस्तान में एक सियासत भी हो रही है और देखना यह है कि क्या होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हद तक जा चुकी है कि अब अगर वो ये इस पर अपना फैसला नहीं देती और कोई रू रियायत देती है तो फिर उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं राय आमा ये है यहाँ पे ख़ास तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट जो है 1.5-2 साल तक इस मामले को लटकाए रखी है, लटकाए रखा है उसने और इस पर अमल दरामद नहीं किया या कराया, तो अब ये ज़रूर होगा। और चूंकि ये मामला बहुत आगे जा चुका है और वज़ीर आज़म के बयानात से ये लग रहा है कि वो भी समझते हैं कि शायद उनके पास वक्त कम है और चुनाचे उन्होंने जो ये कहा कि ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी होगी अगर मैं खत लिखूंगा और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब वो जहनी तौर पर तैयार हैं कि वो हर सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। और एक तरह से आज सदर जरदारी ने अपने खिताब
बहुत
में
बहुत
जो वजीर आजम को बहुत ज्यादा खराज तहसीन पेश किया कि वो जुरतमंद और बहादुर आदमी है और उस वक्त बहुत ही तालियां बजाएंगी जब सदर ये बात कह रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि वो अपने पार्टी के जो लीडर हैं, चाहे इसको आप कुछ भी कह लें, उसके लिए वो कुर्बानी देना चाहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सदीसा वक्त हमारा खत्म हो चुका है
और पार्टी के अंदर
जी बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा आपकी बात मैंने काट दी, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाज़रीन आपने हमारे तीनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगु सुनी। बहरहाल आने वाले दिन जैसा कि हमारे मेहमानों का के पाकिस्तान की सियासत में काफी अहमियत और फैसला कुन किरदार के हामिल होंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बास रिज़वी और दीगर साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।